उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। पृथ्वी देवी के ऊपर कितने ही लोग असत्य का सहारा ले रहे हैं, ये पृथ्वी देवी के ऊपर कितना बड़ा भार है, तो पृथ्वी देवी बहुत ही सहनशील है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें बनाने के लिए पृथ्वी देवी के ऊपर आक्रमण किया जाता है और पृथ्वी देवी के गर्भ में जाकर अलग अलग बहुमूल्य वस्तुएं निकालने का प्रयास करते हैं लोग, लेकिन पृथ्वी देवी चुपचाप सहन करती रहती हैं और मनुष्य योनि के लिए जो भी आवश्यक है वो प्रदान करती रहती हैं। 84 लाख में जितने भी पशु पक्षी हैं सब की देखभाल पृथ्वी देवी कर रही है। तो इसे देखकर मैं सहनशीलता सीखता हूँ। पृथ्वी वायु, वायु से मैं क्या सीखता हूँ? वायु अलग अलग सुगंधों को धारण कर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, लेकिन फिर भी वायु उस गंध से अलग ही रहता है। उसी प्रकार ये आत्मा इस शरीर के अंदर रहते हुए भी इस शरीर से मिलती नहीं। आकाश, आकाश से मैं क्या सीखता हूँ? आकाश से ये सीखते हैं कि आकाश इतना विस्तृत है, फैला हुआ है, अनंत है, और जितनी इमारतें हैं और जो कुछ सृष्टि में है सभी आकाश के अंदर स्थित है, लेकिन फिर भी आकाश पर उसका असर नहीं होता। इसी प्रकार शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार की व्याधियां होने पर भी, शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता। जितने भी कार्य चल रहे हैं बाहरी रूप से हमें लगता है कि शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे कार्यकर्ता कौन है? आत्मा। एक बार आत्मा शरीर से निकल जाए फिर शरीर हिल डुल नहीं सकता। पृथ्वी वायु और आकाशो आप, आप अर्थात पानी, जल, जल कितना शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है। तो अवधूत ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं जल से हृदय की शुद्धता, निर्मलता सीखने का प्रयास कर रहा हूं। जब पर्वत से झरने का पानी नीचे गिरता है तब बड़ी मधुर स्वर निकलती है। झरने का पानी यदि आपने सुना होगा तो झरने का पानी जब नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद बहुत ही मधुर स्वर निकलती है। तो कहा जाता है कि जो महान भक्त होते हैं, महान परमहंस भक्तों की वाणी भी इस ज्वल, इस जल के स्वर के समान मधुर होती है। मधुर का अर्थ क्या है? कि काल और समय के अनुसार वो भगवान की वाणी किस तरह प्रस्तुत करें वो जानते हैं। पृथ्वी वायु और आकाश आप, तो जल से मैं ये सीखता हूँ कि किस तरह नित्य 24 घंटे जब भी मौका मिले कृष्ण के विषय में चर्चा करूं। तो श्री प्रभुपाद से मिलने एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति आए थे जो चैंपियन ड्राइवर थे। तो सारे भक्त बड़े प्रसन्न हुए कि इतनी महान हस्ती आए हैं जो मोटर रेसिंग के विजेता हैं, चैंपियन हैं। तो प्रभुपाद उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रभुपाद ने उनसे मिलकर कहा कि अरे आप ड्राइवर हैं, वो भी चैंपियन रेसिंग करते हैं, मुझे भी बड़ी रुचि है। उसने कहा अरे स्वामी जी आपको रुचि है? बोले हाँ, मैं जब कलकत्ता में था तो मैं भी इस तरह गाड़ी की रेसिंग देखता था। तो बहुत प्रसन्न हुए सुनकर कि सन्यासी के पास आया, सोचा क्या सुनने मिलेगा, ये तो हमारे विषय के बारे में चर्चा कर रहा है। और प्रभुपाद जी उस चैंपियन रेसर से गाड़ियों के बारे में चर्चा करना आरंभ कर दिए कि उस जमाने में 1940-50 में कौन कौन सी मॉडल थी गाड़ियों की, उसके बाद 1960 में कौन सी गाड़ियां आने लगी। और भक्तगण बैठकर सोच रहे थे कि अभी असली बात करेंगे, अभी असली बात करेंगे, अभी गीता भागवत के विषय में बताएंगे, अभी कहेंगे तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो। बैठे थे सुनने के लिए कि अभी कुछ मिलेगा, कुछ आकर्षक, कुछ रोमांचक सुनने को मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद बस 1-1.5 घंटा गाड़ियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग मॉडलों के बारे में। धीरे धीरे करके सारे भक्त बाहर चले गए। बोले ये क्या चर्चाएं हो रही हैं, ये तो भौतिक विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। डेढ़ घंटा की चर्चा के पश्चात प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा बताइए चैंपियन जी, जब आप इस तरह मोटर रेसिंग करते हैं तो कभी कभी दुर्घटनाएं भी होती होंगी? तो उसने कहा, हाँ वो तो आम बात है, दुर्घटनाएं तो होती हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, इतने हाई स्पीड पर चलाते हो तो दुर्घटनाओं से मृत्यु तो होता ही होगा। हाँ एक बार ऐसे स्पीड पर एक्सीडेंट हुआ तो मृत्यु तो निश्चित है। तो प्रभुपाद ने पूछा, आप जानते हो मृत्यु क्या है? तो चैंपियन ड्राइवर भ्रमित हो गए, तो मैं तो नहीं जानता। प्रभुपाद ने कहा, मैं जानता हूं, मैं बताता हूं तुमको। और अगले दो घंटे तक प्रभुपाद जी भगवद गीता के आधार पर मृत्यु क्या है समझाते रहे, और वो बैठकर चुपचाप सुनता रहा। दूसरा चारा ही क्या था, डेढ़ घंटा कार के बारे में सुनाया है उसने। तो पहले ही मृत्यु के बारे में शुरू हो जाते तो उठकर भाग जाता। तो पहले इतना समय तक जो कुछ कचड़ा था वो सब सुना, और उसके पश्चात जब मौका मिला तो इस तरह गीता का प्रचार किया कि वो प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ था कि डेढ़ घंटा उन्होंने मेरे विषय के बारे में सुना, तो अब मैं चलो दो घंटा इनके विषय में सुनता हूं। तो परमहंस जानते हैं कि समय और कालक्रम के अनुसार क्या प्रचार करें। पृथ्वी वायु और आकाशो आपो अग्नि, अग्नि से हम क्या सीख सकते हैं? अग्नि के अंदर कुछ भी डाला जाए अग्नि उसे जलाकर राख कर देता है, लेकिन अग्नि के गुणों पर कोई असर नहीं पड़ता। अग्नि के अंदर पेपर को डाल दो तो पेपर को राख बना देता है, लेकिन इससे अग्नि का तापमान कम नहीं हो जाता, अग्नि पेपर जैसा नहीं हो जाता, तो अग्नि के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं जब प्रचार करते हैं और पतित जीवों को अपना आश्रय देते हैं तो उन पतित जीवों के सभी पापों को राख कर देते हैं, जला देते हैं, लेकिन उनके हृदय पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जो कि पूरे विश्व भर में ऐसे ऐसी परिस्थितियों में प्रचार किया, ऐसे पतित जीवों को प्रचार कर रहे थे जो हर प्रकार की बुरी आदतों में फंसे हुए थे, लेकिन ऐसा संग करते हुए भी वो कमल के पुष्प के समान थे। उन सभी का वो उद्धार कर रहे थे, उन्हें शुद्ध कर रहे थे, लेकिन वो नित्य निर्मल अवस्था में थे। अग्नि के अंदर इतनी शक्ति है सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, लेकिन अग्नि के ऊपर उसका असर नहीं होता। तो अवधूत ब्राह्मण कह रहे थे, मैं भी अग्नि की तरह शक्तिशाली बनना चाहता हूं कि भौतिक परिस्थितियों में मुझ पर कोई असर न हो। पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा। तो हम देखते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चंद्र के इस प्रकार ये दो अलग अलग हम फेजेस देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूर्णिमा से अमावस, अमावस से पूर्णिमा। तो चंद्रमा पहले पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्र दिखता है, और धीरे 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 चंद्रमा का आकार कम होता हुआ प्रतीत होता है, और जैसे जैसे 14वां दिन आता है, अमावस आने लगता है, चंद्रमा की एक छोटी सी लकीर बस दिखती है, और फिर अमावस। अर्थात 14 दिनों में प्रतीत होता है मानो चंद्रमा ने अपने आकार को बदला है, लेकिन वास्तव में क्या चंद्रमा बदल रहा है? नहीं, चंद्रमा चंद्रमा है, बदलता नहीं। उसी तरह प्रतीत होता है देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीर बचपन से लेकर यौवन, यौवन से लेकर वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के पश्चात मृत्यु के निकट आ जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर व्यक्ति बदल रहा है, लेकिन ये केवल चंद्रमा के बदलने की तरह है, क्योंकि असली व्यक्ति तो अंदर बैठा है, आत्मा है, वो बदलता नहीं। जिस तरह चंद्रमा बदलता नहीं लेकिन प्रतीत होता है कि बदल रहा है, उसी तरह हम जो व्यक्ति हैं, जो मैं हूं, जो आत्मा है, वो आत्मा बदलती नहीं, लेकिन आत्मा के ऊपर जो शरीर का आवरण है वो बदलता रहता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारे संपूर्ण शरीर में जितने भी रसायन हैं, आयन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सभी रसायनों को मिलाकर इनके मार्केट का भाव पता लगाओ, कितना रुपए किलो है, और उसके बाद हमारे शरीर में ये कितने ग्राम कितने प्रमाण में उपस्थित हैं पता लगाओ। और यदि आप हिसाब लगाओगे तो हमारे संपूर्ण शरीर की कीमत कितनी आती है, 150 रुपए। ये 2 साल पहले की इंफॉर्मेशन है, अब मार्केट डाउन है और कम होगा। अभी कोई बोलेगा आप तो बस आपकी कीमत 150 रुपए है, बस 80% हमारे शरीर में पानी है। हमारे शरीर का 70 से 75 से 80% हिस्सा केवल पानी का भरा हुआ है। लेकिन क्या हमें कभी लगता है हम अभी बहने वाले हैं? ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा ही असली व्यक्ति है जो शरीर को रूप दे रही है, आकार दे रही है। तो इसीलिए चंद्रमा बदलता हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा बदलता नहीं, शरीर बदलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन असली मैं असली व्यक्ति अंदर बैठा है। चंद्रमा और रवि, रवि का अर्थ है सूर्य। सूर्य से हम क्या सीख सकते हैं? सूर्य की किरणों के प्रभाव से समुद्र का पानी ऊपर जाता है और वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो सूर्य के प्रभाव से ही वर्षा होती है, एक दृष्टि से देखा जाए तो। यदि सूर्य न हो तो बादल नहीं बनेंगे, और बादल न बने तो वर्षा नहीं होगी। उसी प्रकार भक्तों का यह लक्षण होता है, विशेषकर परमहंस शुद्ध भक्तों का यह लक्षण होता है कि अपनी इंद्रियों का प्रयोग संपूर्ण भौतिक वस्तुओं के अर्जन में लगा सकते हैं। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक उपलब्धियां हैं, भौतिक गुण हैं, उन सभी को वो एकत्र करेंगे, और उन्हें एकत्र करने के पश्चात फिर भगवान की सेवा में लगा देंगे, भक्तों की सेवा में लगा देंगे, कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। जिस तरह सूर्य समुद्र के पानी को स्वीकार कर वापस वर्षा के रूप में देता है, तो शुद्ध भक्त भी जितना भी भौतिक जगत में उपलब्ध है उन सभी को लेकर वापस भगवान की सेवा में उसे लगा देता है। तो इससे शुद्ध भक्त के लक्षण हम जान पाते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि साधु सन्यासी होकर बोइंग 747 में घूम रहे हो, ये क्या किसी साधु को शोभा देता है? साधु का तो ये लक्षण वर्णित नहीं है किसी शास्त्र में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, आज की समाज और सारी जनसंख्या जेट की गति से नरक में जा रही है, और उनके पीछे यदि मैं बैलगाड़ी में घूमूं तो कैसे पकड़ सकता हूं? तो क्योंकि जेट की रफ्तार से आप नरक में जा रहे हो, मुझे भी जेट की रफ्तार से आपको बचाने के लिए जाना पड़ रहा है, अन्यथा जेट से मुझे कोई आसक्ति नहीं है। तो जेट एरोप्लेन में क्यों घूम रहे थे? जिससे प्रचार कार्य हो सके। धन संपत्ति क्यों अर्जित करें? जिससे उसे भगवान की सेवा में लगा सके। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आकर बोले, आप धन स्वीकार करते हो क्या? आप तो साधु हो। तो प्रभुपाद ने बोला, कितना कितना देने वाले हो? तो घबरा गया, बोले साधु हैं और उल्टा इस तरह प्रश्न कर रहे हैं, कितना? तो बोले, लेकिन आप तो साधु हो और धन संपत्ति को छूते हो, ये तो साधु को शोभा नहीं देता। प्रभुपाद जी ने कहा, धन केवल साधुओं के पास ही होना चाहिए, अन्यथा आप जैसों के पास रहेगा तो उस धन को लेकर आप सीधा नरक में ही जाओगे। तो इसीलिए हमारे पास वो धन को छोड़ दो, जिससे हम प्रचार कार्य में लगाएं और ठीक तरह से आपको मार्गदर्शन दे सकें। क्योंकि ये सही बात है, जब तक ज्ञान हमारे पास नहीं होता, उस धन का प्रयोग लोग किस लिए करेंगे? केवल इंद्र तृप्ति के लिए। धन का प्रयोग इंद्र तृप्ति में हो तो जितनी जनसंख्या है सब नरक में ही जाएगी। तो सूर्य से ये सीखते हैं कि सबको स्वीकार कर वापस भगवान की सेवा में लगाओ। आप अग्नि चंद्रमा रवि कपोटो जगरस सिंधु। कपोटो अर्थात एक कबूतर का परिवार था जो आपस में बहुत आसक्त था। उनके बच्चे थे, शिकारी ने बच्चों को पकड़ लिया। उसे देखकर माँ घबरा गई, वो भी शिकारी के पिंजरे में जाल में फंस गई। और उनके जो पति थे वो भी घबरा गए, वो सोचने लगे इनके बिना मैं कैसे रहूंगा, वो भी उस जाल में फंस गए और अंततः संपूर्ण परिवार की हत्या हो गई। इसलिए भागवत में बताते हैं, भूतानाम इव संवास प्रपायाम इव सुव्रते दैवेन एकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी, कि जिस तरह अलग अलग आत्माएं एक स्थान पर आती हैं, जैसे किसी होटल में बैठकर हम भोजन करते हैं कुछ समय तक और उसके बाद निकल जाते हैं, या किसी कैद खाने में जेल में एक ही सेल के अंदर चार पांच कैदियों को डाल दिया जाता है, लेकिन सबके अलग अलग कुकर्म हैं और सबको अलग अलग सालों तक रहना है, उसके पश्चात सभी अपनी अपनी दिशा में निकल जाएंगे। उसी तरह एक परिवार में अलग अलग सदस्य आते हैं, कुछ समय तक साथ उठते बैठते खाते पीते सोते हैं, उसके पश्चात सभी सभी अपनी दिशा में निकल जाते हैं। इसीलिए अवधूत ब्राह्मण कहने लगे कि मैं इससे ये शिक्षा प्राप्त करता हूं कि भौतिक आसक्ति से दूर होना चाहिए, और इस तरह की आसक्ति पतन का कारण बनेगा। कपोतो अजगर, और उसके बाद मैंने अजगर को देखा, और अजगर सांप को देखकर क्या सीखा, अजगर सांप को देखा कि एक पेड़ के चारों तरफ लिपटा हुआ था अजगर। अजगर की विशेषता यह होती है कि एक जगह लेटा रहता है और रास्ते में कोई पशु आ जाए तो उसे खा लेता है। यदि कई दिनों तक कोई पशु न आए तो भूखा रहता है। ये अजगर का विशेष गुण है, वो यहां वहां भोजन को ढूंढता हुआ घूमता नहीं। तो कहने लगे कि मैं अजगर से ये सीख रहा हूं कि मनुष्य जीवन में बहुमूल्य समय केवल खाने पीने और सोने और मैथुन करने के लिए व्यर्थ न गवाओ। जिस प्रकार अजगर एक स्थान पर बैठकर अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम कर देता है, उसी प्रकार मेरी भी ये आकांक्षा है कि एक दिन अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से लगभग मुक्त हो जाऊं। तो अजगर इस मामले में बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक प्राणी से हम कुछ न कुछ अवश्य सीख सकते हैं। कपोटो जगर सिंधु, सिंधु अर्थात समुद्र, समुद्र से क्या सीखते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं समुद्र माप प्रवेशंत यद्वत, कि चाहे कितनी भी इच्छाएं हमारे हृदय में आती रहें, यदि हम उन इच्छाओं के आने पर भी विचलित नहीं होते तो समझना चाहिए हमारी चेतना समुद्र के समान स्थिर हो गई है। जिस प्रकार समुद्र में कितने ही नदियां और नदियों का पानी जाता है लेकिन समुद्र बिल्कुल विचलित नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध भक्त की चेतना इतनी स्थिर होती है कि विचलित होने के अनेक परिस्थितियों में आने पर भी वो स्थिर रहते हैं, जैसे समुद्र। कपोटो जगरह सिंधु तिंगला कुरर ओर भक, तिंगला, पिंगला एक वैश्या का नाम था और वो सुबह से शाम तक अलग अलग ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करती रही, लेकिन अंततः हृदय में विरक्ति आ गई, वैराग्य का भाव आ गया और वो सोचने लगी कि मैं इतनी समस्याओं में क्यों हूं, क्योंकि मेरे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं। यदि मैं अपने मन को नियंत्रित कर भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं, अपने मन को इंद्रिय विषयों से दूर कर लूं, तो अपने आप मन शांत हो जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधेयो, तो बाहर का व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं, हमारा शत्रु तो हमारा अपना मन है। यदि किसी रस्सी को देखकर हम घबरा जाएं और सोचे ये सांप है, तो बेचारा रस्सी की क्या गलती है, वो हमारी गलती है कि हमने उसे ऐसे देखा। तो हम इससे सीख सकते हैं कि जिस प्रकार पिंगला को वैराग्य आ गया, ये साक्षात्कार प्राप्त हुआ कि भौतिक इच्छाओं से दूर होना चाहिए, उसी प्रकार जब हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं, एक समय आता है जब हम पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं। तो पिंगला की भी ऐसी ही परिस्थिति थी। और पिंगला के पश्चात कुररोर्भक मधुकृत गज, मधुकृत अर्थात मधुमक्खी, मधुमक्खी और भौरा ये दो प्रकार के होते हैं। भौरा क्या करता है, अलग अलग पुष्पों पर बैठता है, कभी इस पुष्प पर कभी उस पुष्प पर। अनुभ्यश्च मधुभ्यश्च शास्त्रे भ्य कुशलो नर सर्वतः सारम आदध्यात पुष्पेभ्य इव शतपद। जिस तरह भौरा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठकर उनसे केवल उसके सार को निकालता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत सी किताबों को पढ़कर अपने सर पर बोझा नहीं ढोना चाहिए। अनुभ्यश्च मधुभ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो, जितने भी शास्त्रों का सार है उसे ग्रहण करो। ये अंतर है गधे में और भौरे में। गधे को आनंद आता है बोझा ढोने में। जब तक 50-60 किलो गधे के पीठ पर न लादो, गधे को लगता है मैंने आज कुछ किया ही नहीं। लेकिन भौरे की यह विशेषता होती है कि अलग अलग पुष्पों पर जाकर कुछ समय तक बैठता है लेकिन केवल सार को स्वीकार करता है, मधुकृत। और दूसरा मधुमक्खी होता है जो अपने छत्ते में इतना अधिक मधु एकत्र करता है कि मधु एकत्र करने के वशीभूत वो उसी में फंस जाता है। जिस मधु को उसने बड़े प्रयासों से एकत्र किया उस मधु के चिपचिपाहट में ही वो फंस जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यदि हम जीवन भर केवल धन संपत्ति का संचय करते रहें और अपने सर पर बहुत ही भारी स्वर्ण मुकुट पहन ले और हम नदी में डूबते रहें, तो वही स्वर्ण मुकुट हमारे डूबने का कारण बन जाता है। तो ये मधुकृत मधु से सीखा, पिंगला मधुकृत गज। तो मधुकृत गज, गज अर्थात हाथी। हाथी को देखकर क्या सीखते हैं, हाथी को देखकर हम सीखते हैं कि हाथी काम वासना के वशीभूत अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। जब शिकारी एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और उसके दूसरी तरफ हथिनी को रखता है, इतना बड़ा हाथी, एक छोटा सा शिकारी, एक साधारण मनुष्य उसे पकड़ लेता है क्योंकि काम वासना पर उसकी नियंत्रण नहीं। मधुहा हरिनो मीन, मधुहा अर्थात मधु को चुराने वाला। मधु को कौन चुराता है, मनुष्य चुराता है। मधु को एकत्र कौन करता है, मधुमक्खी एकत्र करती है बहुत प्रयास करके। लेकिन मनुष्य आता है और एक क्षण में आकर उस छत्ते के सारे मधु को ले लेता है और हम उसे प्रेम से खाते हैं और उस मधु का आस्वादन करते हैं। लेकिन पता है उस एक चम्मच मधु को बनाने के लिए मधुमक्खी कितने फूलों पर दरदर भटक रही थी। वो जो एक चम्मच मधु हम खा रहे हैं वो वास्तव में किसी मधुमक्खी के कई दिनों का प्रयास होगा। लेकिन मधुमक्खी जब मधु को एकत्र करती है तब उसे पता नहीं लगता कि एक दिन मनुष्य आएगा और इसे छीन लेगा मधुहा। इसीलिए उत्साह पूर्वक वो एकत्र करती जाती है। मनुष्य आता है, प्रेम से छत्ते को नीचे उतारता है और सारे मधु का आस्वादन वो करता है। गीता में भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृद्ध। अंततः चाहे कितना भी धन संपत्ति का संचय करो, मैं मृत्यु के रूप में आकर उन सभी को ऐंठ लूंगा, छीन लूंगा। इसीलिए मृत्यु के समय तो मेरे प्रति समर्पित होना है, इससे अच्छा है मृत्यु के पहले ही समर्पित हो जाओ। यदि भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के प्रति समर्पित न हो तो काल रूप में भगवान के समक्ष तो समर्पित होना ही पड़ता है। तो मधुहा से हम ये सीख सकते हैं। मधुहा हरिणो, हिरण बहुत मधुर ध्वनि को सुनकर आकर्षित होता है जो कि शिकारी बजाता है अपनी वेणों पर, और वो धीरे धीरे शिकारी के निकट आता है। और शिकारी जब पास उस मृग को देखता है तो तुरंत पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है। यदि भौतिक संगीत के प्रति हम आकर्षित हुए तो इन भौतिक संगीतों के प्रति आकर्षित होकर हमारा मन विचलित होगा और वो हमारे इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि शब्द ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है। हरि न, तो हम देखते हैं कि जितने भी संगीत चलते हैं फिल्मों में और बाकी जगह, लोग बस 24 घंटे उसी में रमे रहते हैं और उन्हें लगता है कि इससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ है ही नहीं। यदि संगीतों को नहीं सुन रहे तो कहीं चल रहे किसी मैच का आंखों देखा हाल सुनते हैं, ये भी भौतिक ध्वनि ही है। देखा जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, फिर भी इतने सारे लोग आकर बैठकर श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुन रहे हैं। विश्व के किसी कोने में एक गेंद को 22 लोग लाते मार रहे हैं एक दिशा से दूसरी दिशा, उसे देखने के लिए पूरा विश्व आतुर है कि लात किसने कैसे मारी और उस गेंद का क्या हुआ जब लात मारी। तो एक व्यक्ति ने एक बार फुटबॉल के गेम को देखकर अचरज किया कि बेचारे 22 लोग एक गेंद के पीछे इतने पागल क्यों हैं, सबको एक एक गेंद दे दो तो सभी शांति से अपने एक एक कोने में जाकर बैठकर खेलेंगे। बेचारे पता नहीं क्यों इतना गिर रहे हैं, पटक रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो शब्द ध्वनि कितने आतुर रहते हैं सुनने के लिए, क्या हुआ क्या हुआ क्या चल रहा है। श्रोतव्यादि राजेंद्र नाम संति सहस्रश, इस तरह श्रवण के लिए अलग अलग वश्य वस्तु मिल जाते हैं, लेकिन मृग के समान हम भी पकड़े जाएंगे मृत्यु के पास में। मधुहा हरिणो मीन, मीन अर्थात फिश, मछली। मछली पानी के अंदर छोटे छोटे कीड़ों को खाकर संतुष्ट रहती है, अचानक देखती है कि सफेद सफेद कुछ आकर्षक वस्तु आ गया। अरे ये क्या है, ये तो नया है, पहले देखा नहीं। नई वस्तु के नए खाद्य पदार्थ को देखकर वो बहुत आकर्षित होती है और मछली जाकर थोड़ा चखती है। वो आटे का एक टुकड़ा होता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मछली कहती है वाह, ऐसा तो पानी के अंदर मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया स्वाद, और पूरी तरह उसका आस्वादन करने में तल्लीन हो जाती है। लेकिन उसके अंदर एक हुक होता है और देखते देखते मछली का मुंह उसमें अटक जाता है और मछली का अंत होता है। तो अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि जब भी मैं किसी खाद्य पदार्थ को देखता हूं तो सबसे पहले सोचता हूं खाने योग्य है कि नहीं। मांसाहार करना अनुचित है, यदि मांसाहार करेंगे तो हमें भी भविष्य में इस तरह किसी पशु का रूप धारण करना पड़ेगा और हमारी भी हत्या होगी। इसीलिए मांसाहार कृपा करके ना करें, इससे बहुत पापों के भागीदार हम बनते हैं। तो खाने के लिए भगवान ने इतने अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए हैं, उसे रोज भगवान को भोग लगाकर आप खाएं। प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो मृत्यु पाश से बच जाते हैं। तो मधुहा हरिणो मीन कुरर और भक, कुरर, कुरर नाम का एक पक्षी होता है। एक बार अवधूत ने आसमान में देखा कि एक कुरर पक्षी आसमान में उड़ रहा था और उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। तभी कई बाज और चील पक्षियों ने उस पर आक्रमण किया और जैसे ही चीलों के इस झुंड ने उस पर आक्रमण किया, इस कुरर पक्षी ने अपने मुंह में अटके हुए उस मांस के टुकड़े को नीचे फेंक दिया और जितने बाज थे जितने चील थे वो कुरर को छोड़कर फिर उस मांस के टुकड़े के पीछे भागने लगे और उनका आपस में युद्ध होने लगा कि अब उसे कौन खाएगा। क्योंकि सही मौके पर सही समय पर उचित समय पर कुरर पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ा, इसीलिए वो बच गए। तो अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि इससे मैं यह शिक्षा ग्रहण करता हूं कि मनुष्य जीवन में भौतिक आसक्तियों का किस समय परित्याग करना चाहिए, विषय वस्तुओं का किस समय परित्याग करना चाहिए, यह जानना आवश्यक है। क्योंकि हमारी समय सभी समस्याओं का कारण है विषय वस्तुओं से आसक्ति। यदि कुरर पक्षी ऐसा सोचती कि मैं इस टुकड़े को खा के ही रहूंगी तो सारे बाज उस पर आक्रमण करते और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते, क्योंकि उन्होंने उसे समय पर छोड़ दिया इसीलिए वो बच गए। इसी तरह विषय वस्तुएं ही हमारी सभी दुखों के कारण बनते हैं। विषय वस्तुओं को त्याग दो। एक बार विषय वस्तुओं को त्याग दिया फिर आप पर आक्रमण कौन करेगा, क्योंकि आपके पास है ही क्या। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बार एक बंदर ने एक बोतल के अंदर देखा कि कोई वस्तु है, और वो बोतल के अंदर हाथ डालकर देखते हैं तो चना था। बोतल के अंदर हाथ डालते हैं, चने को मुट्ठी में लिया और बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन चाहे कितना प्रयास करे बोतल के बाहर हाथ निकलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुट्ठी बंद है। फिर उन्होंने मुट्ठी खोल दी और जो चना था वो नीचे छूट गया। फिर अपना हाथ निकाल लिया, देखा अरे बाहर तो निकल गया लेकिन चना कहाँ गया। फिर अंदर डाला, फिर चने को हाथ में लिया, लेकिन फिर देखा कि हाथ बाहर नहीं निकलता। अंततः वो बंदर भी समझ गया कि जब तक इससे मैं वैराग्य प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो लोग प्रश्न करते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन में ये सारे नियम पालन करना अनिवार्य है क्या? आप पालन करते हैं ठीक है, आप तो महान हैं, लेकिन हम जैसों के लिए कोई दूसरा मार्ग है क्या बगल से? तो ये सब करते करते भी हरे कृष्ण मंत्र तो अच्छा है, लेकिन साथ साथ कोई दूसरा मंत्र जो हम इंद्र तृप्ति करते करते साथ साथ कर सकें? नहीं, साथ साथ नहीं हो सकता। जब तक मुट्ठी भरे हैं तब तक हम इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकते। तो हमें समझना चाहिए कि जिस तरह कुरर पक्षी ने समय पर उसे त्यागा, उसी तरह हमें भी इंद्रिय विषय वस्तुओं से समय पर वैराग्य विरक्त होना है। तो कुरर अर्भक, अर्भक का अर्थ क्या है? छोटा बालक। अवधूत ने देखा कि एक छोटा बालक बड़े प्रेम से बड़े आनंद में घूम रहा है। उसे कोई चिंता नहीं थी, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े आनंद में दिख रहे थे। तब उस अवधूत ने सोचा कि जीवन में असली सुख चाहिए तो चिंता मुक्त होना कितना आवश्यक है। कहा जाता है भागवतम में, यश्च मूर्तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तौ उभौ सुखम एधेते क्लिश्यन्ति अंतरितो जना। दो लोग ही सुखी रहते हैं, एक है शुद्ध भक्त और दूसरा है मूर्ख। यही दो लोग इस जीवन में सुखी रह सकते हैं। बीच में जितने भी आते हैं वो सभी किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट रहते हैं, उनके ऊपर किसी न किसी समस्या का आक्रमण है ही। तो उस बालक को देखकर वो सोचने लगे कि यदि जीवन में सुख चाहिए तो ऐसा चिंता मुक्त होना पड़ेगा, तभी सत्वगुण की वृद्धि हो सकती है। और उसके पश्चात आगे वो देखने लगे, मधुहा हरिनोमिन पिंगला क्रूर भुक कुमारी शरकृत सर्प ऊर्णनाभिर सपेशकृत। कुमारी, एक कुमारी थी, कन्या थी, जिसके घर में कुछ मेहमान आए, अतिथि आए, और वो गेहूं को कूटने लगी, लेकिन उसके हाथ में चूड़ियां थी और चूड़ियों की कनकनाहट से उसने सोचा कि अतिथि क्या सोचेंगे, हमारे घर में कोई नौकर भी नहीं है। तो एक एक करके चूड़ियों को उतारने लगी, अंत में दो दो चूड़ियां बज गईं। फिर भी उन चूड़ियों की आवाजों से अतिथि को पता लग रहा था कि अंदर कोई इस तरह गेहूं कूट रहा है। तब उसने उन एक एक चूड़ी को भी निकाल दिया, अंत में दोनों हाथों में एक एक चूड़ी बज गई, तब फिर शांति हुई। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति एकांत में होता है, अकेला होता है, तो उसके काफी लाभ हैं। एक, वो कोई प्रजल्प नहीं करता, और दूसरा, कुछ मतभेद नहीं होता और झगड़े नहीं होते। जब एक से अधिक व्यक्ति साथ में मिलते हैं और उनके चर्चा का केंद्र कृष्ण नहीं है तो या तो प्रजल्प करेंगे या झगड़ा करेंगे। तो इसीलिए अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि जब तक हमारे समान व्यक्ति हमें नहीं मिले अच्छा है कि एकांत में रहें, अकेले रहें, अन्यथा इन दोनों में से एक बात तो होनी ही है। तो उसके बाद कुमारी शरकृत, शरकृत अर्थात एरो मेकर, बाण को बनाने वाला। एक व्यक्ति बैठकर रास्ते पर बाण तैयार कर रहा था और जैसे वो बाण तैयार कर रहा था राजा उस दिशा से आया, लेकिन उस बाण को तैयार करने में वो इतना मग्न था कि राजा को आते हुए भी उसने नहीं देखा। पूरी तरह लगे हुए थे कि बाण को कैसे तैयार करें। तो उसको देखकर अवधूत ने सोचा कि इतनी तल्लीनता एक बाण को बनाने में, उसका ध्यान इतना केंद्रित है कि राजा आ गए उनका भी आदर नहीं किया। तो उसको देखकर उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने मन को इस तरह एकाग्र कर सकूं तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि मन को शांत करना और मन को नियंत्रित करना आसान नहीं। एक बार एक व्यक्ति बैठकर, एक साधु बैठकर ध्यान लगा रहे थे, तो एक भौतिकवादी व्यक्ति आया और कहने लगा, आप क्या कर रहे हो, बैठकर समय गंवा रहे हो। कहा, नहीं, मैं मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं, इससे कोई लाभ नहीं, कुछ प्रैक्टिकल करो। तो साधु ने कहा, ठीक है, ये बात है, ये मैं तुमको दवा देता हूं और चुनौती देता हूं, एक सप्ताह के बाद आकर मुझसे मिलो और बताओ क्या हुआ। और ध्यान रहे, दवा लेते समय लाल बंदर के विषय में चिंतन मत करना। उसने कहा, हाँ ठीक है, उसमें क्या है। एक हफ्ते के बाद आए साधु के पास, साधु के सामने आकर दंडवत किया और बोले, आप महान हैं, आप मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हो, आप तो महान हैं। साधु ने कहा, क्यों भाई, एक हफ्ते में ऐसे क्या बीत गई। उन्होंने कहा, आपने जो दवाएं दी थी वो तो बहुत भयंकर है, जैसे मैं पुड़िया खोलता और दवा लेने का प्रयास करता तब मैं सोचता कि साधु ने कुछ कहा था। क्या कहा था? हाँ, लाल बंदर के विषय में मत सोचो। और उसी क्षण लाल, पीले, नीले, हरे, हर प्रकार के बंदर मेरे मन में आ जाते, कूदने लगते। तो मन में से विषय वस्तुओं को जितना दूर भगाने का प्रयास करता हूँ, विषय वस्तु उतने ही वेग से मुझ पर आक्रमण करते हैं। तो नेति नेति ये कार्य नहीं करता। जब तक ऊंचा स्वाद नहीं, कृष्ण का चिंतन नहीं, केवल हम सोचते रहें ये नहीं ये नहीं, तो वो नहीं के साथ वो वस्तु भी है, तो उसके विषय में भी सोचना पड़ता है। तो मन को एकाग्र कैसे करें, क्योंकि मन तो बंदरों के समान कूदता रहता है। इसके लिए सबसे उत्तम मार्ग है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। उसके बाद कुमारी शरकृत सर्प, सर्प को देखकर मैं क्या सीखता हूँ। सर्प को देखकर लोग लाठी लेकर मारने भागते हैं, लेकिन वास्तव में सर्प से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर्प बड़ा ही चतुर है। क्यों? बंबई में लोग जीवन भर कठोर मेहनत करते हैं। क्यों? जिससे जीवन के अंत में बंबई के किसी कोने में एक फ्लैट मिल जाए, एक घर बन जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन सर्प इतना बुद्धिमान है कि वो इसमें अपना समय नहीं बिताता, घर कैसे बनाए ये सोचता नहीं कभी। चूहा बैठकर घर बनाता रहता है, सर्प बगल में बैठकर सोता रहता है, कहता है बनाने दो, पूरा उसको प्रोत्साहन देता है बनाने के लिए। एक बार चूहे ने बिल बनाया, उसके बाद सर्प सीधा जाता है, चूहे को खा लेता है और उसके घर में ही रह लेता है। तो अवधूत कहता है कि सर्प देखो कितना बुद्धिमान है, खुद कुछ प्रयास नहीं करता घर बनाने के लिए, लेकिन बड़े प्रेम से एक बिल में रहता है। और सर्प के पास इतनी स्वतंत्रता है कि उस घर में रहकर बोर हो गए तो उसको छोड़कर दूसरे बिल में चला जाता है, और वहां पर कुछ समय तक रहकर उब गए फिर दूसरे बिल में चला जाता है। तो वो किसी एक घर से आसक्त नहीं रहता। सर्प बड़ा वैरागी है, एक घर से आसक्त नहीं रहता। तो सर्प के इस वैराग्य को मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं। इसे कहते हैं अहिर्मुष्टिक न्याय। एक बार एक चूहा और एक सर्प एक टोकरी में फंस गए थे। तो चूहा सर्प को देखकर घबरा गया, बोले मुझे खा जाएगा। तो सर्प ने कहा, चिंता मत करो, हम तो मित्र हैं, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, ऐसा करो जरा इस टोकरी में एक छोटा सा छेद बना दो। उसने ठीक है, छेद बनाया। जैसे छेद बनाया सर्प ने उसे खा लिया और बाहर निकल गए। तो सर्प ऐसा कार्य करते हैं, तो सर्प से हम ये भी सीख सकते हैं कि भौतिकवादी लोग जो अपनी बुद्धि और समय का प्रयोग करके इतनी सारी भौतिक वस्तुएं और अलग अलग वैज्ञानिक यंत्र बनाए, उन वैज्ञानिकों के अलग अलग मशीनों को लेकर भगवान की सेवा में लगाओ। जिस तरह सर्प बैठकर देखता रहता है दूसरे कार्य करते हैं और फिर उसका भोग करता है, वैसे भक्त कहता है कि वैज्ञानिकों को चलो आप बनाओ, जो बनाना है बनाओ, कंप्यूटर बनाना है बनाओ, आपको माइक्रोफोन बनाना है बनाओ, नए नए मॉडल बनाने हैं गाड़ियों के बनाओ, लेकिन उसके बाद हम उसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि अंततः वो तो भगवान की ही संपत्ति है। तो इसीलिए सब कुछ भगवान की सेवा में वो लगा देता है। कुमारी शरकृत सर्प ऊर्ण नाभिर सुपेशकृत, ऊर्ण नाभिर अर्थात मकड़ी, मकड़ी अपना जाला बनाती है, लेकिन मकड़ी स्वयं अपने जाले में फंसती नहीं है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों का निर्माण कर रहे हैं। 14 लोकों में जितने भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही निर्मित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रिभिर गुणमयर भवैर एभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य अजम अव्यजम्। तीनों गुण मुझसे ही आते हैं लेकिन मैं तीनों गुणों के अधीन नहीं हूं। तो इस मकड़ी को देखकर हम सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, कृष्ण भौतिक नियमों के अधीन नहीं हैं। इससे कृष्ण भगवान की आध्यात्मिक दिव्य स्थिति का ज्ञान होता है। और अंततः सपेशकृत, पेशकृत क्या होता है? पेशकृत एक ऐसा इंसेक्ट होता है, ऐसा कीड़ा होता है जो केवल चिंतन करने मात्र से अपने शरीर को बदल देता है। चिंतन करता है और चिंतन करके वो अपने शरीर को बदलकर हवा में उड़ने लगता है। तो उसके चिंतन का उसके शरीर पर असर होता है। उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि जो ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसमें हमारे चिंतन का एकमात्र विषय वस्तु हो, वो क्या? भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमल। इसीलिए मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें बाकी सभी बातों को त्याग कर मन को केवल भगवान श्री कृष्ण की शब्द ध्वनि में एकाग्र करना है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीता गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। तब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अंततः 12वें स्कंद पर आ जाते हैं, जहां श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को सुनाते सुनाते अंत करते हैं। लेकिन उसके पहले हम 12वें स्कंद में वर्णित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो है कलयुग के लक्षण। तो कलयुग के लक्षण इसके विषय में 5000 साल पहले ही बता दिया गया है और कई बार हम इनको कार्यक्रमों में वर्णन करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये श्रीमद् भागवतम में ही लिखा है। तो इसीलिए हम श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद से ही चर्चा करेंगे और देखिए कितने सुंदर सुंदर लक्षणों का वर्णन किया गया है जो हम साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इसके ऊपर हम एक छोटा सा नोट्स आपको बांटेंगे कार्यक्रम के पश्चात। तो बहुत संक्षेप में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो बताया जाता है कि कलयुग का लक्षण क्या है। ततश्चनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम दया क्षमा कालेन बलिना राजन नंशन्ति आयुर बलम स्मृति। सबसे पहला लक्षण है ततश्च अनुदिनम धर्मम, धर्म का अभाव होने लगता है। सत्यम शौचम क्षमा दया, ये सारी बातें कम होने लगती हैं। तो स्वाभाविक है, हम देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 50 साल पहले भी लोग कितने धार्मिक थे, मंदिरों में जाते थे, लेकिन आज की तारीख में लोग मंदिरों में नहीं जाते, चित्र मंदिर या